Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अरे बाबा परमात्मा सब कर सकता है, सब करता है, ये कहना तुम्हारा पूर्वाग्रह है कि परमात्मा कुछ काम कर सकता है और कुछ काम नहीं कर सकता है। परमात्मा का केवल अनुग्रह रूप ही देखते रहना ये साधक के लिए गलत है। परमात्मा का निग्रह रूप भी देखना चाहिए, क्योंकि दोनों रूप परमात्मा के हैं। केवल एक रूप को यदि तुम परमात्मा को मानकर उसका अनुभव करते रहोगे तो परमात्मा का दूसरे रूप का कौन अनुभव करेगा? फिर इसका मतलब परमात्मा परिच्छिन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। परमात्मा हर रूप धारण कर सकता है, परमात्मा हर कर्म कर सकता है, तब ज्ञान भी दे सकता है, ज्ञान ले सकता है, स्मृति दे सकता है, स्मृति ले सकता है। ज्ञानम स्मृतिम अपोहनम। अब ये सर्वत्र प्रमाण है भाई। अर्जुन को विश्वरूप दिखाने के बाद ज्ञान दिया, विशेष बुद्धि दी और कहा कि ये अर्जुन तुम इन आंखों से मेरे विश्वरूप विराट रूप को तुम नहीं देख पाओगे, तुम विशेष दृष्टि ले लो। उन्होंने दिया, विशेष बुद्धि दी, विशेष ज्ञान दिया, उसके द्वारा अर्जुन ने उस विराट रूप का दर्शन किया, अनुभव किया। बाद में अर्जुन इस विराट रूप के सब कुछ भूल जावे, इसके लिए वो सबका अपहरण कर दिया। तो अर्जुन ये भूल गया कि ये वही परमात्मा है, वो फिर पुनः अपने व्यवहार के लिए वही मेरे सारथी है, वही मेरे कृष्ण है, मेरे साथी है। सकेति मत्वा प्रसवम ये दुप्तम ये कृष्ण हे यादव हे सकेति। उस विराट रूप की स्तुति करते समय ये कह रहा था कि महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने आप जैसे परमात्मा को न जानकर मैंने आपको केवल एक मित्र के रूप में कहा, मित्र के रूप में लिया, जबकि आप केवल मित्र नहीं है। भगवान ने उस स्मृति को अपहरण किया, अर्जुन को फिर वही मित्र बुद्धि हो गई। पहले भगवत बुद्धि हुई और वही मित्र बुद्धि। देवकी को पहले भगवत बुद्धि हुई अब पुत्र बुद्धि हुई। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच। एष देवो, वही वह देवता है जो सभी के अंदर साक्षी के रूप में विद्यमान है, वह देव। व्यष्टि समष्टि देवगंधर्व किन्नर जीव समस्त प्राणी मात्र में साक्षी के रूप में साक्षात अनुभूयते इति साक्षी, या साक्षात पश्यति इति साक्षी। स्वयं को स्वयं देखता है इसलिए उसको साक्षी। वो और को भी देखता है और स्वयं को भी देखता है, वो और को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है, इसलिए वो साक्षी। एष देवो विश्वकर्मा, उस परमात्मा को विश्वकर्मा कहा। विश्व उसका कर्म है। कहे परमात्मा क्या करता है, परमात्मा का कर्म क्या है, परमात्मा क्या करता है? शंकराचार्य जी कहते हैं वो विश्वकर्मा है। विश्व जो है वो उसका कर्म है। यदि उसका कर्म न हो तो विश्व ही नहीं होगा। वह कुछ नहीं करता फिर भी विश्व उसका कर्म है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, विश्व कर्म है। विश्व रूपी कर्म करने के लिए उसको न तो सहयोगी कारण चाहिए न उपादान कारण चाहिए। बिना सहयोगी कारण बिना उपादान कारण वह खुद ही सारे विश्व को विश्व रूपी कर्म को करता है। महाभारत में प्रसंग आता है कि जब युधिष्ठिर जुआ में हार गए, ताश में हार गए, अक्षय क्रीड़ा में वह जब हार गए, परास्त हुए, तो शर्त अनुसार उनको वनवास जाना पड़ा। और सब राजपाट छोड़कर माने युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के सहित, पत्नी के सहित, मां के सहित जंगल में जाकर बैठे, खांडव वन। पुराणों में आपने सुना है खांडव वन कहां रहे, तो बोले भयंकर घनघोर जंगल था खांडव वन। कहा कि तुम ये सब हस्तिनापुर छोड़कर जाओ खांडव वन में। बोले ठीक है, तो सब के सब छोड़ दो। भगवान ने कहा कि छोड़ दो, वो कहता है तो छोड़ दो भाई। युधिष्ठिर ने सब हस्तिनापुर छोड़ा और खांडव वन के तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान भी जाग गए, देखते हैं कैसे रह रहे हैं हमारे मित्र लोग, जरा देखें। जब वहां गए तो बड़ी विपत्ति थी, बड़ी आपत्ति थी। रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो भगवान गए और उन्होंने मया नामक एक दानव को कहा, अरे भाई इस जंगल को सब आबाद करो। परमात्मा की आज्ञा थी, इस जंगल को सब आबाद करो, हरियाली करो और यहां बढ़िया महल बना दो इसी जंगल में। तो आप लोगों ने तो सुना ही है। और वही हुआ, तालाब हुआ, महल हुआ, हरियाली, फूल, बगीचा। कहां जंगल भयंकर घनघोर था, जहां कितना सुंदर बगीचा, कितना सुंदर महल। ऐसा कर्म किया, ऐसा खेल खेला परमात्मा ने कि सामान्य व्यक्ति को तो जल में थल की भ्रांति और थल में जल की भ्रांति। दुर्योधन गया ना वहां, भगवान की इस लीला के द्वारा उनके पास समृद्धि हुई। और भगवान ने कहा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर विश्व तुम अश्वमेध यज्ञ शुरू करो, अब तुम्हारे पास सारी समृद्धि है, संपदा है, इसीलिए तुम अश्वमेध यज्ञ शुरू करो, यही मौका है। तो सभी को आमंत्रण दो और सबको पता चले कि पुरुषार्थ के द्वारा, मेहनत के द्वारा कुछ भी हो सकता है, खांडव वन भी इंद्रप्रस्थ हो सकता है। वही खांडव वन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इंद्रप्रस्थ हुआ। और जो सारी साधना और भौतिक साधनों से संपन्न हस्तिनापुर था, भगवान कृपा से बना हुआ जो नवनिर्मित इंद्रप्रस्थ, उसके सामने हस्तिनापुर तो एक गांव जैसा लगने लगा। और वही आज दिल्ली जो है वही इंद्रप्रस्थ है। और हस्तिनापुर अभी भी वो यूपी में पड़ता है, गांव जैसा ही है मेरठ के पास। अब कोई जानता नहीं, मेरठ इतना बड़ा शहर हो गया, हस्तिनापुर जैसा का वैसा गांव का गांव ही रह गया वही। और जो परमात्मा की कृपा से आबाद हुआ वो इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी हो गई। तब सब लोग आए, उसी समय दुर्योधन भी आ गया। दुर्योधन जैसे रथ से उतरकर उस गृह में प्रवेश करने लगा, तो प्रवेश द्वार में ही ऐसी संरचना हुई थी, दुर्योधन को लगा कि यहां तो पानी है, तो वो अपने कपड़े सब उठाने लगा, ऊपर उठाया, कपड़े को ऊपर करके वो चलने लगा। चलता है तो पानी तो है ही नहीं भाई, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या बात है, मैं तो पानी मान रहा था। तो उसी को खुद को लगा कि मैं मूर्ख हो गया हूं, मैं कैसी मूर्खता की। वे थोड़ी दूर आगे गया, उसको वास्तव में पानी था, लेकिन उसको क्या लगा कि भाई पहले पानी जैसा मानकर हमने कपड़ा उठाया तो पानी तो था नहीं, वो तो जमीन ही था। तो ये भी जमीनी होगा, ऐसे ही करके फिर उसमें कपड़ा छोड़ा और गया तो पानी में गिर गया, डूब गया, कपड़े सब भीग गए। जल में थल की भ्रांति और थल में जल की भ्रांति, यही तो विश्वकर्मा की कर्म है। विश्व जिसके कर्म हैं, ऐसा विचित्र विचित्र रचना करता है वह, इसलिए तो उसका नाम विश्वकर्मा। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे कर्म वो करता है, ऐसी सृष्टि करता है, ऐसी रचना करता है। ये न शुक्ल कृतो हंसा सुकाश्च हरिति कृता मयूराश्चित्रिता ये न सते वृद्धि मृत्युम विदास्यति। हंस को बिल्कुल सफेद किया, कहीं कोई और एक छोटा सा भी अन्य रंग का वहां सम्मिश्रण नहीं है। ये न शुक्लिक कृता हंस, और सुकाश्च हरिति कृता, जिसने सुख को बिल्कुल हरा बनाया। मयूरा चित्रिताय न, और मयूर को सातों रंग से रंग दिया, कोयल को पूरा का पूरा काला बनाया, मयूर को पूरा का पूरा बहुरंगी बना दिया, और सुक को बिल्कुल हरा बना दिया, हंस को बिल्कुल सफेद बना दिया। ये सारी क्षमता किसमें है? यही तो विश्वकर्मा। हमारे एक अद्वैत वेदांत के आचार्य हुए हैं मधुसूदन सरस्वती, उनको अपने माता पिता की बड़ी चिंता होती थी, और तो कुछ नहीं था लेकिन जन्म दिए हुए माता पिता थे तो उनका जो है सेवा करना वो अपना कर्तव्य मानते थे और माता पिता की सेवा करते थे। कुछ दिन के बाद उनको ऐसा लगा कि माता पिता से पहले मैं मरने वाला हूं, मेरा शरीर छूटने वाला है। होता ये कर्म का फल है। उसने सब के सब एक नियम बना दिया है कि कौन व्यक्ति कब मरे, तो यह कोई समय की सापेक्षता नहीं है। और यही हम लोग भूल कर जाते हैं, हम मानते हैं कि इतनी समय के बाद मृत्यु होती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। मृत्यु का कारण समय नहीं है, मृत्यु का कारण प्रारब्ध है, जिसका प्रारब्ध जहां समाप्त हो जाता है वहीं उसका शरीर छूट जाता है, उसकी मृत्यु होती है। क्योंकि शरीर का संबंध प्रारब्ध से है, तो जहां प्रारब्ध समाप्त हुआ, जिस समय प्रारब्ध समाप्त हुआ उसी समय उस शरीर छूट जाएगा। तो हमारी सामान्य मान्यता यह है कि कम उम्र वाले बाद में मरे, ज्यादा उम्र वाले पहले मरे। हम उस समय ये भूल जाते हैं कि किसका प्रारब्ध कब समाप्त हो जाता है और कब मरता है। तो उन आचार्यों को लगा कि उनके माता पिता की अपेक्षा पहले उनका प्रारब्ध समाप्त हो रहा है, पहले वो मर जाएंगे। तो उन्होंने माता पिता को कहा, पिताजी मुझे लगता है कि इस शरीर का प्रारब्ध आप लोगों के शरीर के प्रारब्ध से पहले समाप्त हो रहा है, होगा। तो माता पिता को बड़ा चिंता हुई, दुख हुआ। तुम्हारा शरीर पहले छूट जाएगा तो अभी तुम हमारा देखभाल करते हो, तुम्हारे शरीर छूट जाने के बाद हमारा देखभाल कौन करेगा, हमारे परवरिश कौन करेगा? माता पिता ने कहा, तब तो हम भी तुम्हारे साथ साथ ही मर जाएंगे। तो उन्होंने यही श्लोक का प्रयोग किया, ये न शुक्ल कृता हंसा सुकाश्च हरिति कृता मयूराश्चित्रिता ये न सत्ति वृत्तिम विधास्यति। एक विश्वास पूर्वक विश्वास करो, इस संसार के कर्म, संसार की रचना में जिसने बिल्कुल कोयल को काला बनाया, हंस को बिल्कुल सफेद बनाया, मयूर को सप्तरंगी बनाया, सुख को बिल्कुल हरा बनाया, ये सब करने की क्षमता वाला वो परमात्मा नहीं मरता है। आपका हमारा शरीर नष्ट हो जाए और हम आपकी हमारी मृत्यु भले ही हो जाए, उस परमात्मा का शरीर नष्ट नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए वह सारी व्यवस्था करने वाला वही है, तो चिंता नहीं करना। इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी आपकी योगक्षेम की व्यवस्था वही करेगा, उसी पर भरोसा रखो। भरोसा एक राम के, बस वही तो उसकी विश्वकर्मा है। कुछ भी कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता वो? गाय हरी हरी घास खाती है तो और देती है सफेद दूध। उस हरे घास से सफेद दूध के निर्माण करने वाला कौन है उस गाय के अंदर? कोई किसी ने कंप्यूटर लगा रखा है क्या? वही विश्वकर्मा है, वो करता रहता है उस शरीर के अंदर बैठकर, और उसी हरे घास में से रक्त बनाने का, लाल रक्त बनाने का काम भी वही करता है। उसे हरे घास में से सफेद दूध बनाने का काम भी वही करता है। और आश्चर्य की बात है कि रक्त और दूध प्रवाहित उसी शरीर के 72 करोड़ नाड़ियों में प्रवाहित होते हैं, और प्रवाहित होने पर भी जब दूध दूहते हैं, हम जब उसके बच्चे को आगे लगाकर जब दूध दूहते हैं, तब चाहे जितने निचोड़ लो तो रक्त नहीं आता है, खाली दूध आता है। दूध रहता है जब तक दूध है, दूध आता है, दूध खत्म हो गया नहीं आएगा, रक्त नहीं आएगा। और कोई डॉक्टर उसी के बगल में यदि इंजेक्शन लगाकर खींचता है तो रक्त आता है, दूध नहीं आता है। गाय के जो स्तन है, बच्चा खींचता है तो दूध आता है, गाय का बछड़ा खींचता है तो दूध आता है, और वही डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर खींचता है इंजेक्शन सुई से तो फिर रक्त आता है। वही कारण क्या है? ये सारी व्यवस्था मिलाता है वही, उसी के है विश्वकर्मा। विश्व में जितने भी अलौकिक अलौकिक घटनाएं, अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं, वो सब उसी के कर्म हैं। जिसको हम असंभव कहते हैं वो संभव कर देता है। मूक होई वाचाल पंगुम लंगयते गिरिम, यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। तुलसीदास जी लिखते हैं, उसके विश्वकर्मा पर उनको, तुलसीदास जी को पूरा भरोसा है। मूक होई वाचालम, हम ये समझते हैं कि ये कभी भी अब बोल नहीं सकता है, बिल्कुल मूंग है, बिल्कुल गूंगा है, लेकिन उसकी निगाह हो जाए, उसकी कृपा हो जाए तो वह इतनी फर्राटेदार भाषा से बोल पाएगा। मुंह को वही बाचाल पंगुम लंग गए थे गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ को चढ़ जाएगा। यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। शंकराचार्य जी के जीवन में घटना घटी, हस्तमलकाचार्य पट्टमूर्ख व्यक्ति है, और वही पट्टमूर्ख के कारण एक शब्द भी बोल नहीं सकता है, उसी के कारण उसके माता पिता ने लाकर शंकराचार्य जी के पास छोड़ दिया था। महाराज ये कुछ बोलता नहीं, कुछ नहीं है, आपके आश्रम में रहेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, कई बार होता है भाई, हमारे देवघाट गलेश्वर आश्रम में वैदिक गुरुकुल चलता है, गुरुकुल चलाते हैं हम। जब उस गुरुकुल में ब्राह्मण के बच्चों को भर्ती करने का समय आता है, एडमिशन का समय आता है, प्राय करके स्कूलों में पढ़ नहीं सकने वाले फेल हुए हुए बच्चों को हमारे गुरुकुल में लाते हैं, लेके आते हैं, महाराज आपके गुरुकुल में हमारे बच्चे को आप पढ़ाना है। मैंने तो कितना पढ़ा है ये? बोले बहुत मुश्किल से भी 5 कक्षा पास हुआ है, फिर आगे और पढ़ाना चाहिए था, तुम गुरुकुल में क्यों लाए, वहीं स्कूल में पढ़ाते। बोले 3 वर्ष हो गया फेल हो गया स्कूल में, पढ़ता ही नहीं, 3 साल से लगातार फेल हो रहा है, पढ़ता ही नहीं हमारा। जब स्कूल में नहीं पढ़ता है तो फिर गुरुकुल में क्यों लाए हो? बोले महाराज आप गुरुकुल में रुद्री सिखा दिए, चंडी पढ़ा दीजिए, आप जो गुरुकुल में पढ़ाते हो कर्म कांड रुद्री और चंडी, दो चार साल में रुद्री और चंडी पढ़ लेगा, जजमानी करके गणानंत्वा गणपति गुम करते हुए ये अपने योगक्षेम कर लेगा, आगे स्कूल में पढ़कर कोई उन्नति करेगा ऐसा तो नहीं लगता है। ऐसे लोग लाते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि अच्छा छोड़ जाओ, चलो कोई बात नहीं, आगे नहीं पढ़ सकता हम इसको पढ़ाएंगे और हम इसकी चुटिया करके अपने चेला बना लेंगे। बोले ये काम नहीं करना, फिर पढ़ा के भेज देना। लो जी तुम्हारे घर का जो नालायक है वो हमारे पास भेजो, फिर हम उसको लायक बना के हम अपने पास रखें तो वो शर्त नहीं, लायक बना के फिर तुमको दे। लो जी ये संसार तो ऐसा ही है। अब वही होता है, हमसे पूछते हैं कि महाराज आपके इतने पचास पचास ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते हैं बटुके हैं, बाद में ये पढ़ लिखने के बाद तो आपके चेले होकर आश्रम चलाएंगे। बोले कोई नहीं चलाने वाला है, हमारे आश्रम चलाने के लिए तो कोई घर से पत्नी से झगड़ा करके आएगा वही चलाएगा और क्या। हाँ, नारी मोही गृह संपत्ति नासी मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी, तुलसीदास जी ने सन्यासियों का कुछ सन्यासियों का लक्षण बता दिया है, ऐसे भी सन्यासी होते हैं, पत्नी मर गई अब घर में कोई मजा नहीं रहा तो चलो क्या करे, तो चले सन्यासी हो जाओ, मूड़ मुड़ा लो, चुटिया काट लो। हाँ, गृह संपत्ति नासी, व्यापार में घाटा हुआ करो क्या, अब चलो सन्यासी बन जाओ, वहां तो आराम से खाने को मिल जाएगा, ता है मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी है। देख लो तो हमारे यहां एक कहावत है साधुओं में, घर में हुई खटपट तो चले बाबा के मठ पर, घर में हुई खटपट तो चले बाबा के मठ पर, बाबा ने काटी चोटी तब दी खाने को रोटी। ये हम लोग ऐसा कहा करते थे, बाबा ने जब चुटिया काटी तब जाकर रोटी खानी थी। हाँ, यहां तक तो सब ठीक हुआ, बाबा ने लगाई काम तो चेला हुए रमते राम, वो काम करता तो घर में खटपट होती क्या, उसने काम नहीं किया इसलिए घर में खटपट हो गई, घर में खटपट हुई तो बाबा के मठ पर आ गया, अब बाबा ने चुटिया काटी तो तब रोटी खाने दी, वो चाहता था कि चुटिया काटो और रोटी खाने दो, बाबा ने लगाई काम तो चेला हो गए रमते राम, तो काम ही करना था तो तुम्हारे यहां क्यों आते है? ऐसी भी एक कहावत है, ये सदैव विश्वकर्मा महात्मा, वो विश्वकर्मा भी और वह महात्मा भी है, आत्मा परमात्मा और महात्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच का है महात्मा। आत्मा माने सामान्य जीव आत्मा, संसारी जीव आत्मा, परमात्मा माने जो संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकता है वो परमात्मा, और उनके बीच में है महात्मा। महात्मा वो संसारी भी नहीं है, दिखता है संसारी जैसा, संसार में रहता है लेकिन वो संसारी नहीं है। महात्मा संसारी नहीं है तो परमात्मा है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो परमात्मा ही होकर, परमात्मा जैसे परोक्ष हो गया वैसे भी वो परोक्ष नहीं होता, परमात्मा तो परोक्ष है, परमात्मा इंद्रिय का विषय नहीं होता, परमात्मा मन का विषय नहीं होता, परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं होता, परमात्मा साधना के द्वारा अनुभव का विषय होता है, बुद्धि का विषय नहीं होता, मन का विषय नहीं होता, इंद्रिय का विषय नहीं होता, और ऐसा नहीं कि वह संसारी नहीं है महात्मा तो वह फिर परमात्मा ही हो गया, इंद्रिय अतीत हो गया, मन अतीत हो गया, बुद्धि का अतीत परे हो गया, ऐसा भी नहीं कि आपके घर में, आपके घर आंगन में, आपके ही समाज में घूमता है, आप उसको आंख से भी देख सकते हैं, आप उसको मन से भी ध्यान कर सकते हैं, बुद्धि से भी ध्यान कर सकते हैं, अंतकरण से भी ध्यान कर सकते हैं, उसके हाथ से सेवा भी कर सकते हैं, उसके साथ अपने संवाद भी बढ़ा सकते हैं, उससे आप ज्ञान भी सुन सकते हैं, अपने प्रश्न भी सुना सकते हैं, आपके प्रश्नों को भी सुन लेगा और आपके प्रश्न के उत्तर भी देने देगा। परमात्मा से तो आपका संवाद नहीं होगा, तो हम शाम को स्पिरिचुअल सेंटर भी जाते हैं ना, स्वाध्याय में विवेक चूड़ामणि चल रहा है 5:30 से 6:30 वहां जाते हैं। तो ऐसे ही 2-3 दिन पहले की बात है, जब हम 5:30 बजे अपने दरवाजा बंद करके हम वहां स्पिरिचुअल सेंटर जाने के लिए तैयारी करके बाहर निकल रहे थे, तो एक भक्त ने पूछा कि महाराज आप वॉकिंग के लिए जा रहे हैं? तो हमने कहा नहीं नहीं, हम टॉकिंग के लिए जा रहे हैं। परमात्मा टॉकिंग भी कर नहीं सकता है, लेकिन महात्मा टॉकिंग कर सकता है। परमात्मा और महात्मा में यही तो अंतर है। वो महात्मा है, टॉकिंग कर सकता है, लेकिन संसारी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बोल सकता है इसका मतलब संसारी है, खाता है इसलिए संसारी है। संसारी भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, यानी आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। वो महात्मा का भी काम करता है, वह सब कुछ करता हुआ भी वह महात्मा है, महान आत्मा है। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। कहां रहता है वो विश्वकर्मा, कहां रहता है वो महात्मा? सदा जनानां, सदा, ऐसा नहीं कभी रहता और कभी नहीं रहता, सदा जनानां, जो जन्म लिए हुए प्राणी हैं उन्हीं के सन्निविष्ट, सम्यक निविष्ट, सन्निविष्ट, उसी के साथ, उसी के अंदर, उसी के शरीर में रहता है वो। सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट, हृत आहृत, हरणात आहरणात इति हृत, ये जो हृदय, हृदय बोलते हो ना, वो क्या है? ये हृदय, ये सभी के संस्कारों को आहार करने वाला होने के कारण इसको हृदय कहते हैं। आप जो देखते हो उसका संस्कार भी उसने अपने में आहरण करके ले लेता है, आप जो सुनते हो उसके संस्कारों को आहरण कर लेता है, आप जो सूंघते हो, जो आप सूंघते हो, जो चखते हो, जो देखते हो, जो छूते हो, बाहर विषय के रूप में आप जो कुछ भी पदार्थों को ग्रहण करते हो, उन सारी के सारे पदार्थों को तो वहीं का यहीं छोड़ देता है, लेकिन उस पदार्थ के केवल संस्कार को वह वहां से हरण करके, आहरण करके, धारण करने के कारण उसको हृदय कहा, और वही वह सन्निविष्ट है, रहता है। हृदय मनीषा मनसा विकल रेप्तो, वो हृदय है, हृदय में रहने के कारण हृदय है। हरति इति हृत्तेन हृदय नेति नीति इति ही निषेधोपदेशेन मनीषाम पुरुषार्थो अयम, अयम पुरुषार्थो अयम आत्मा, शंकराचार्य जी कहते हैं। अतः तो आदेश नेति नेति करके बाधाधिष्ठान को अपने हृदय में धारण करने वाला होने के कारण हृदय मनीषा, वही मनीषा है, मनन ईश है। मनसा विकलरिप्तो, वह मन में रहकर प्रकाशित होता है। क्लिप्त का अर्थ होता है प्रकाश, ज्योति स्वरूप। अविकलरिप्त मनसा, अविकलरिप्त यह पद है, प्रकाशितो अखंड एकर सत्तेना अभिव्यक्त इत्यर्थ, अखंड एक रस के रूप में उसी हृदय में अभिव्यक्त होने के कारण उसको मनसा अभिक्लिप्त कहा। ऐसे लक्षण वाला जो परमात्मा, जो देव है, जो विश्वकर्मा है, और जो महात्मा है, जो हमेशा प्राणियों के हृदय में अहम अहम के रूप में स्फुरित होता है, और सब असातो नेति नेति करके बात करके उस तत्व का हृदय में मन मनीषा है, मनन करता है, और हृदय में प्रकाश आत्मा के रूप में अभिव्यक्त होता है। ऐसे लक्षण वाला जो परमात्मा है, या ये तद विदु, जो उस परमात्मा को इस रूप में जानता है, उस परमात्मा को जो इस रूप में जानता है, अमृतास्ते भवंती ते अमृता भवंती, क्योंकि जो परमात्मा वह कभी मरता नहीं, यानी उसका कभी नाश नहीं होता है, वो नाश नहीं होता, ये जानने वाले का वाला भी नाश नहीं होता, అసదేవ స భవతి అసద్ బ్రహ్మేతి వేద చేత్ అస్తి బ్రహ్మేతి చేద్ వేద సంతమేనం తతో విదు. ముండక ఉపనిషద్ మే కహా గయా హై కి వో పరమాత్మా బిల్కుల్ అసత్ హై హీ నహీ, ఐసా జో మాన్తా హై వో అసత్ హీ హో జాతా హై, లేకిన్ వో పరమాత్మా హై ఐసా హీ హై, జిస్ జాన్తా హై వహీ సంత హోతా హై, సత్తావాన్ హోతా హై. యే ఫల్ హో గయా, యే తత్ విదు అమృతాస్తే భవంతి, దుబారే ఫిర్ మర్నే కే లియే పైదా నా హోనే కే లియే ఉస్ పరమాత్మా కో ఇసీ తరహ జాన్నా చాయియే, ఔర్ జిస్నే ఇస్ తరహ జానా వహ యే జన్మ మే యే శరీర్ తో మరేగా, లేకిన్ యే శరీర్ కే నష్ట హోనే పర్ భీ వహ నిశ్చయ కరేగా కి మే నష్ట నహీ హోతా హూం. యహీ అమృత హై, ఇస్కే అలావా ఔర్ కోయి అమృత నహీ, యే నహీ సమజ్ లేనా. ఉస్ బ్రహ్మ కో జాన్నే కే బాద్ యే శరీర్ నష్ట నహీ హోగా యే నహీ సమజ్ లేనా. యే శరీర్ తో ప్రారబ్ధ సే పైదా హువా హై, బ్రహ్మ జ్ఞాన్ హోనే కే బాద్ భీ యే శరీర్ నష్ట హోగా, పరంతు ఇస్ శరీర్ కే నష్ట హోతే హుయే భీ యే శరీర్ కే నష్ట హోనే పర్ మేరీ మృత్యు హోగీ, యే బుద్ధి ఉస్కీ నహీ రహతీ హై శరీర్ నష్ట హోనే పర్ భీ మే నష్ట నహీ హోతా హూం, యే నిశ్చయ హీ ఉస్కీ అమృతపనా హై అమరపనా హై. ఓం పూర్ణమదా పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.